ओम शांति। आज बहुत सुंदर विषय है योग के गहन अनुभव। अभी हम सब दादी जी के मुखारविंद से ही प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी इस समय ऐसे वरदानी भूमि पर आए हुए हैं जो चारों ओर से बाप दादा द्वारा व बाप दादा के बच्चों द्वारा आपको बहुत कुछ प्राप्ति हो रही है। बाप दादा के तो कोने कोने में वरदान इस वरदान भूमि में समाये हुए हैं और साथ में सारे परिवार के, क्योंकि इतना बड़ा परिवार तो आपके कोई भी सेंटर पर नहीं होगा, लेकिन तो उन सभी ब्राह्मण आत्माओं की शुभ भावना और शुभकामना एक दो के प्रति जो है वो भी बहुत ही कुछ आत्मा में बल भरती है। इसलिए इस वरदान भूमि पर नाम ही है इसका मधुबन है ही वरदान भूमि। तो जहाँ वरदान ही वरदान है, हर सेकंड में हर कर्म में आप इस वरदान भूमि द्वारा अपने को वरदानों से भरपूर कर सकते हो। अभी कितना कर रहे हो वो तो आप अपने को जानो, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि इस वरदान भूमि से जो वरदान प्राप्त कर सकते हैं वो करते रहना। अमृत वेले से लेके क्यों, सबसे बड़े में बड़ा फायदा इस मधुबन भूमि का यही है कि आप यहाँ बेफिक्र बादशाह हो, कोई फिक्र नहीं है कमाई का, घर को संभालने का व कोई भी विशेष जिम्मेवारी जो प्रवृत्ति में होती है वो यहाँ नहीं है। इसीलिए आपका मन और बुद्धि भी फ्री है, उन लौकिक ड्यूटीज से फ्री है और बना बनाया सब मिलता है यहाँ। तो बेफिक्र बादशाह हो, तो बेफिक्र बादशाह की जो स्थिति है वो यहाँ अनुभव बहुत अच्छी तरह से और सहज रीति से कर सकते हो। तो सभी ऐसे बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव कर रहे हो, माताएं कर रही हो, हाँ। भाई पांडव याद तो नहीं आता, दुकान और बाल बच्चे पोतरे दोतरे तो नहीं याद आते, नहीं क्यों, यहाँ आप वरदान भूमि में वरदानों से भर के जाएंगे तो वहाँ उन लोगों को भी भरपूर करेंगे। इसलिए उनों का फिक्र न करके बेफिक्र बादशाह होके रहना, रह रहे होंगे और आगे भी रहना, क्योंकि बाबा जैसे कहता है ना, तो संगम युग के समय का भी महत्व जानना चाहिए। स्वयं का महत्व तो जानते ही है हम कौन है, अगर देखा जाए तो हम कौन है, हमारा स्वमान क्या है, वो हर रोज के मुरली में बाबा हम बच्चों के लिए कोई न कोई टाइटल देता है। अगर उस ध्यान से आप हर रोज की मुरली सुनो तो रोज न रोज कोई टाइटल जो होता है वो ही हमारा स्वमान। कभी बाबा किस रूप में कहते हैं, कभी बाबा किस रूप में कहते हैं। तो जैसे अपने स्वमान में अगर रहेंगे, लेकिन हर मुरली में एक स्वमान तो बार बार रिपीट होता है, वो है मीठे मीठे तो कहता ही है बाबा, लेकिन लाडले सिकिल दे, ये भगवान के शब्द कम है क्या? भगवान के सिकिल दे है। दुनिया में कोई आत्मा, परिवार की आत्माएं हैं, लौकिक बाप है, दादी दादा जो भी होते हैं, उनके सिकिल दे होते हैं तो भी उसको नशा होता है, लेकिन हमको लाडला शब्द कौन बोलता है? भगवान कहता है मेरे लाडले बच्चे, ये स्वमान कम है क्या? चलो और सब भूल गए, ये तो रोज रोज याद आता है। और मीठे मीठे बाबा कहता है, क्यों कहता है? कोई करवा भी होगा, लेकिन बाबा फिर भी मीठे मीठे ही कहता है। क्यों बाबा मीठे मीठे कहता है? क्योंकि बाबा को हमको मीठा ही बनाना है। कितने भी कड़वे हो, लेकिन बाबा के पास आए मीठे बनने के लिए है, तो बाबा रोज स्मृति दिलाता है ये कि मीठे मीठे हो, अगर थोड़ी भी कड़वेश हो तो मीठा मीठा सुनने से तो कड़वेश निकल जाएंगी ना। अभी हम कड़वी दवाई खाए, मानो हमारा मुख कड़वा तो होगा टेम्पररी टाइम के लिए, लेकिन ऊपर से मैं मिठाई खा लूं तो मेरा मुख तो बदल जाएगा ना, कि कड़वा ही रहेगा, बदल जाएगा ना। तो हम चाहे कितने भी कड़वे हो, संस्कार है 63 जन्म के, कई भाई बहन कहते हैं चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है, ये कौन बोलता है? कौन सी आत्मा बोलती है? चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, ये कौन सी आत्मा कहेंगे? भगवान की सिकिलदी आत्मा ऐसे कहेंगी? कह सकती है ऐसे? जरूर कमजोर आत्मा है, जो संकल्प भी आता है तो चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। तो उस आत्मा को कौन सी आत्मा कहेंगे? सिकिलदी कहेंगे या कमजोर आत्मा कहेंगे? अगर मैं कमजोर आत्मा हूं तो क्या भगवान हमको रोज वरदान देता है मीठे मीठे सिकिलदे लाडले? तो क्या ये भगवान का वरदान मेरे लिए नहीं है? रोज वरदान बाबा देता है लाडले सिकिलदे, और हमारे से वो मिलता ही नहीं है, जीवन में प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो भगवान का वरदान अगर हम नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या स्वीकार करेंगे? इसके सिवाय और कौन आएगा जो हमको ऐसा बनाएगा जो बाबा कहता है लाडले सिकिल दे बच्चे? और तो कोई कल्प में किसी द्वारा भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते, भगवान द्वारा भी हम परिवर्तन नहीं कर सके तो और कौन सा? भगवान का बाप तो है ही नहीं जो आएगा, भगवान ही आएगा। तो कब बनेंगे और कौन बनाएगा हमको? क्या हमारी हर कल्प में यही तकदीर रहेंगी? तो अपने से ये पूछो, अपने से बात करो, अगर अब भी भगवान के होते हम नहीं बने तो कब बनेंगे? इतनी पावरफुल दृष्टि, पावरफुल वरदान, पावरफुल नॉलेज और तो कोई दे ही नहीं सकता है। तो यही मेरी तकदीर है क्या? ऐसे नहीं बोलो कि चाहते तो नहीं है, ये सोचो मैं ब्रह्मन आत्मा, ब्रह्मन माना ही है विजयी। अगर आप विजयी नहीं हो ये सोचते हैं कोई भी, तो चाहते तो नहीं है। लेकिन फिर रायल शब्दों में क्या कहते हैं कि चाहते नहीं है लेकिन मेरी नेचर है ना, मैं चाहता नहीं हूँ, मेरा भाव भी नहीं है, लेकिन हो जाता है ना, क्या करें, नेचर है। लेकिन ब्रह्मन की नेचर तो ये है ही नहीं। ब्रह्मन माना विजयी। अगर मानो थोड़ी भी कमी है तो उसको ब्रह्मन आत्मा कहेंगे या क्षत्रिय आत्मा कहेंगे, क्या कहेंगे? ब्रह्मन माना तो विजयी हुआ। अगर विजयी मैं नहीं हूँ, युद्ध ही करता रहता हूँ, चाहता नहीं हूँ लेकिन हो जाता है, अच्छा कोशिश करूंगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा देखूंगा, तो वो क्षत्रिय हुआ या ब्राह्मण हुआ? तो क्या मैं क्षत्रिय रह जाऊंगा? और अगर क्षत्रिय रह जाऊंगा, आज भी बोली में था ना, बाबा तीन धर्म स्थापन करता है, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो क्या मैं क्षत्रिय धर्म का हूँ, ब्राह्मण धर्म का नहीं हूँ? तो बाबा से मैंने वर्षा यही क्षत्रिपन का लिया। ज्ञान का सागर वरदाता बाबा, और उससे मैंने यही वरदान लिया कि क्षत्रिपन का। फिर तो अपने को सोचना चाहिए ना। तो हमेशा ये सोचना चाहिए, पहले बाबा मेरे को क्या बना रहा है, मेरा स्वमान क्या है। अगर रोज एक टाइटल मुरली का आप नोट करो और उसी एक टाइटल के स्वमान में आप सारा दिन अपने को स्थित करने की कोशिश करो, आपकी नेचर बदल जाएगी। जो कहते हैं ना, हम अपने को छुड़ाने के लिए ये शब्द है कि मेरी नेचर है ना ये, बाकी मैंने गुस्सा नहीं करता हूँ लेकिन मेरी नेचर है जोर से बोलने की, ऐसे सीधा बोलने की मेरी नेचर है, क्रोध नहीं है। चलो क्रोध नहीं है, क्रोध का अंश तो है, और जहाँ अंश होगा वहाँ वंश नहीं पैदा होगा, ये तो नियम है। जहाँ अंश होगा वहाँ वंश जरूर पैदा होगा। आपने देखा होगा यहाँ इंडिया में जो नलके नहीं लगाते हैं गंदा पानी निकालने का, वहाँ बूंद बूंद थोड़ी रह जाती है, तो वहाँ पंछी जो बैठते हैं ना आकर के पानी पीने के लिए, वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे पीपल का पेड़ निकल आता है, देखा होगा कई स्थानों पे। तो क्या हुआ, बीज पड़ा ना, अंश रहा, उसे वंश वृक्ष का पैदा हो गया। तो इसीलिए अगर मानो हम ये अपने को थोड़ा सा कमजोर बनाते हैं, तो क्या होता है, अंश से कभी वंश पैदा हो जाता है, और फिर वो वंश जो है वो फैलता जाता है, और हमारी अवस्था जो हम चाहते हैं वो नहीं अनुभव होती। तो कहावत है कि जब ब्रह्मा ने भाग्य बांटा तो क्या आप सोए हुए थे क्या? ये भी अलबेलापन है, मेरी नेचर है, मैं क्या करूं, ये अलबेलापन। तो अलबेलापन में क्या होता है, सोना ही तो होता है, काम नहीं होगा और लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, यही तो अलबेलापन होता है। तो ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा, भगवान ने भाग्य बांटा, तो हम अलबेले के नींद में सोए हुए तो नहीं थे, ये हमारे से कहावत तो नहीं लग जाती है। और है देखो कितना सहज ज्ञान, हम तो कहते हैं चलो मोड़ लिया, आपको तीन पेज नहीं याद पड़ सकती, या तो तीन पेज सारा ही याद रहे, सारी ही याद रहता है, विशेष बातें ही याद रहती है। लेकिन हम कहते हैं एक शब्द बाबा ऐसा बताया है हमको जिसमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चार ही सब्जेक्ट आ जाती है, एक शब्द आप याद रखो तो वो कौन सा शब्द है जिसमें चार ही सब्जेक्ट आ जाती है? वो है, आप अपने मन में सोचो फिर मिलाना, तो वो एक शब्द है बिंदु। एक शब्द है। अभी देखो बिंदु में मैं आत्मा हूं ये भी आ गया, और बाप मेरा कौन है वो भी बिंदु है, और फिर चलते चलते जो सरकमटेंस आते हैं, समस्याएं आती है, उनको पार करने के लिए बाबा ने कहा है क्वेश्चन नहीं करो, आश्चर्य की मात्रा नहीं लगाओ, सिर्फ फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। धारणा के लिए अगर हमको फुल स्टॉप याद हो, लेकिन कई भाई बहन ऐसे जब कोई समस्या आती है ना सामने तो कहते हैं लगाने तो बिंदु चाहती थी, लेकिन बिंदु लगाती हूँ क्वेश्चन मार्क बन जाता है, और क्वेश्चन मार्क में क्यों, क्या, कैसे, कौन, ये कह कह के शब्द आएंगे आप, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये है कौन जो ऐसे कहता है या करता है, ये कह कह के ही शब्द आएंगे। तो लगाते हैं बिंदु लेकिन बन जाता है क्वेश्चन मार्क। तो हमारे, हमने सुना है, अनुभव तो मेरे को नहीं है, ये जो कंप्यूटर होता है उसमें शब्द फिक्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड जीवन के कंप्यूटर से ये क्वेश्चन मार्क जो है ना वो निकाल लो, खत्म कर दो। हमारे ब्रह्मांड जीवन के डिक्शनरी से ये क्यों, क्या, कैसे, समस्या के टाइम क्यों, क्या, कैसे, वो रंग है। बाकी ज्ञान व स्पष्ट करने के लिए क्यों, क्या से टॉपिक बन सकती है। यही चार पांच शब्द जो है इससे आप कोई भी टॉपिक का भाषण भी तैयार कर सकते हो, और यही चार पांच शब्द जो है वो समस्या को हल करने में विघ्न भी बन सकते। क्यों? जैसे मानो आप शिवरात्रि का भाषण करने चाहते हैं, ये तीन चार शब्द बोलो, क्यों, क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, आपका भाषण तैयार हो जाएगा। और समस्या के समय ये क्वेश्चन मार्क जो होते हैं क्यों, क्या का, वो विघ्न रूप बन जाएगा। लेकिन आप किस रूप से यूज करते हो वो हमारे ऊपर है, उल्टे रीति से करते हैं या सुलटे सेवा के रूप से करते हैं। तो हम कहते हैं चलो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द बिंदु तो याद करो, सब सब्जेक्ट आ गई, और जो बिंदु रूप में स्थित तो होगा वो सेवा के बिना रह सकेगा, रह ही नहीं सकता। तो इसी रीति से आप अपने ब्रह्मांड जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। ऐसे नहीं राजी रहना कि ठीक है दुनिया से तो अच्छे हो गए, दुनिया के झंझट से तो ये ज्ञान के आधार से छूट गए, चलो ब्राह्मण बन गए, बाबा के बच्चे तो बन गए, लेकिन भगवान के बच्चे बन करके और थोड़ा सा वर्षा छोटा सा थोड़ा बहुत कुछ ले लिया तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। जब दाता दे रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, दाता से तो पूरा लेना चाहिए ना, क्योंकि हम भगत नहीं है। अगर हम इतने में ही थोड़े में ही खुश हो जाते हैं, चलो सुखी हो गए, क्लास तो करते हैं ना, रोज मुरली तो सुनते ही है ना, जितनी सेवा होती है उतनी करते हैं, ठीक है ब्राह्मण हो गए। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो थोड़े में राजी होने वाले जो है वो भगत होते। बच्चा जो होता है वो कभी थोड़े में कोई भी बाप उसको कहे बस तुमको 1000 की वर्षा मैं देता हूँ बाकी तो बांट देता हूँ, राजी होगा क्या वारस बच्चा? नहीं होगा ना। बच्चा तो समझता है ना हम पूरे जायदाद के मालिक है। तो जब बाबा के हम बच्चे हैं, भगत तो नहीं है ना, कोई भगत है क्या यहाँ? हो भगत तो हाथ उठाओ, कोई भगत है? भगत को बच्चा बनना पड़ेगा ना, कोई नहीं हाथ उठाता। माना यहाँ सभी बारस बैठे है ना, बच्चे बैठे है ना, तो बच्चे तो पूरे वर्षे के मालिक होने चाहिए ना। और देने वाला दाता के पास है, कोई कमी हो ना तो हम समझे चलो इतने में ही राजी रहो, लेकिन वो दे रहा है। वो कहते हैं ना देंदा दे लेंदा थक पाए, तो देने वाला नहीं थकता, लेने वाले थक जाते। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो हमेशा ये सोचो अपने स्वमान में स्थित रहो। ऑक्यूपेशन हमारा क्या है? कोई भी आपसे पूछे, अभी तो आप ब्राह्मण लाइफ में आ गए ना, वो लौकिक लाइफ तो है निमित्त मात्र, लेकिन आप अपना अगर साइन करते हैं या किसको भी बताते हैं तो क्या कहते हैं? बीके फलाना, बीके फलाना। जब बीके अपने आगे लगाते हैं तो अभी हमारे ब्राह्मण जीवन हो गई, लौकिक जीवन तो निमित्त मात्र है, वो तो ट्रस्टी हो गए, गृहस्थी नहीं हो अभी। वो तो बाबा ने काम दिया है संभालने का और आप ट्रस्टी बन के उसको संभाल रहे हो, आपकी प्रवृत्ति नहीं है। आपकी प्रवृत्ति है कि आप ट्रस्टी बन के प्रवृत्ति संभाल रहे हो। जब ट्रस्टी है तो बाबा कहते हैं गृहस्थी और ट्रस्टी, उसमें एक ही शब्द का अंतर होता है। गृहस्थी माना मेरा और ट्रस्टी माना तेरा, शब्द का फर्क है तेरा और मेरा, मैं और तय, एक ही शब्द का अंतर है, लेकिन इसमें प्राप्ति कितनी अंतर की है। तो प्रवृत्ति अभी आपकी नहीं है, जो भी काम करते हो वो आप ट्रस्टी हो के कर रहे हो। ट्रस्टी या नहीं गृहस्थी हो? ट्रस्टी है माताएं, ट्रस्टी है कि मेरा पुत्र है? अगर ममता है तो फिर ट्रस्टी नहीं, फिर तो गृहस्थी हो गए। और तेरा है बेफिक्र बादशाह, मालिक वो बैठा है, हम ट्रस्टी होके संभाल रहे हैं, जैसे वो डायरेक्शन देता है वैसे हम कर रहे हैं, हमारे ऊपर बोझ थोड़ी है। लेकिन बाबा कभी कभी हम बच्चों को देख के मुस्कुराता है। किस बात पर मुस्कुराता है? बाबा कहते हैं बच्चों को देख करके मुस्कुराता हूँ कि मैं कहता हूँ बोझ मेरे को दे दो, लेकिन बोझ देते नहीं, फिर भी अपने सिर पर रख करके बैठ जाते। बोझ से इतना प्यार हो गया है, क्योंकि 63 जन्म बोझ उठाए है ना, तो बोझ से इतना प्यार हो गया है जो कोई ना कोई बात का बोझ उठा देते हैं। और मैं ऑफर कर रहा हूँ, भगवान ऑफर कर रहा है कि सारा बोझ मेरे को दे दो, फिर उठाते क्यों है। और अगर सारा बोझ बाबा के ऊपर छोड़ दो, कई ऐसे भाई बहन है, बातें तो बहुत मीठी मीठी सुनाते हैं ना, तो कहते हैं हम बोझ तो बाबा को दे दिया लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ना, क्योंकि मैं रहता हूँ ना सामने, करना तो पड़ता है लेकिन करो ना, बाबा थोड़ी कहता है करो नहीं, लेकिन करावन हार करा रहा है ये तो नहीं भूलो, करो क्यों नहीं। आप हम है करनहार, और हमारा करावन हार कौन है, हम ही करावन हार बन जाएंगे तो बाबा क्यों करावन हार बनेगा, कहेगा करो बोझ संभालो, क्या कहेगा। और फिर बोझ से थकते भी हम ही है, जब थक जाते हैं तो कहते हैं बाबा अभी छुड़ाओ ना, बाबा अभी हटाओ ना, बाबा अभी कर, बाबा सुनेगा क्यों। बाबा कहते मैं क्यों, जब कह चुका हूँ नहीं करो फिर भी करते हो, मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए कई भाई कहते हैं मेरे को पता नहीं क्यों कोई भी काम में सफलता नहीं होती, योग में भी बैठता हूँ मजा नहीं आता है, बैठता तो हूँ नेमी नाथ होके बैठते हैं, मजा नहीं आता, सफलता नहीं होती, मेहनत भी करता हूँ सफलता नहीं होती, पता नहीं क्या है, क्यों नहीं सफलता होती, क्यों कि आप तेरे और मेरे को मिला लेते हो, करावन हार को भूल जाते हैं, अपने को ही करावन हार करन हार दोनों ही मिक्स कर देते हैं, इसीलिए सफलता नहीं होती। योग में मजा क्यों नहीं होता है, क्योंकि मेरापन है तो बॉडी कॉन्शियस है, आत्म अभिमानी बने नहीं तो आत्मा ही नहीं बने तो परमात्मा से कनेक्शन होवे कैसे। कई कहते हैं पता नहीं क्या मेरा भाग्य शायद ऐसा है, बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन भाग्य मेरा ऐसा है। भाग्य बनाने वाला कौन, कर्म से ही भाग्य बनता है ना, अगर मैं कर्म ही ऐसा करता हूँ तो मेरा भाग्य तो वही बनेगा। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवान के महावाक्य है, कोई आत्मा महात्मा के वाक्य नहीं है। भगवान ने हमको कहा है कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार। जब हम ब्राह्मण जन्म लिया तो बाबा ने हमको क्या वरदान दिया, यही दिया ना, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार। तो जो जन्म का अधिकार होता है वो प्राप्त नहीं होवे ये हो ही नहीं सकता है। कारण क्या होता है, हमने जो भी बातें सुनते हैं तो उसका कारण एक हमने देखा, कारण क्या होता है, पहले तो निश्चय रखते हैं हाँ, बड़े उमंग में चाहे लौकिक कार्य चाहे सेवा का कार्य, पहले बड़े उमंग से उठाएंगे, फिर थोड़ा सा भी नीचे ऊपर वो तो पेपर तो होता ही है, थोड़ा होगा ना फिर अपने में ही संशय पैदा हो जाता है, पता नहीं कर तो रहा हूँ, होगा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, अभी अपने में ही संशय उत्पन्न कर देते। तो संशय बुद्धि कभी विजयी हो सकता है, संशय बुद्धि विजयी नहीं होता है, अपने में ही संशय होता है, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। बाबा ने एक हंसी में बोला था, पता नहीं कहते हैं तो अपने इस ब्राह्मण ये परिवार का जो झार है ना, इससे पता नहीं कहने वाले का पता ही टूट जाता है। अभी पता टूट गया तो क्या होगा। तो अपने में जो संशय पैदा होता है ना, वो अपना ही उत्पन्न हुआ संशय सफलता को खत्म कर दे। विजयी हो ही नहीं सकते है ना, क्योंकि संशय बुद्धि हो गए। दूसरा संशय रखे नहीं रखे वो दूसरी बात है, लेकिन अपने में ही संशय पैदा हो गए तो वो तो नहीं होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए, क्या क्यों होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत है? क्योंकि 63 जन्म से क्या क्यों कहते आई है तो छूटे कैसे। लेकिन जन्म ही नया हो गया ना, आपको अपने पास्ट जन्म की स्मृति है। मेरे संस्कार क्रोधी थे, लोभी थे या बड़े प्यार के थे, शांति के थे, आपको याद है क्या? नहीं, भूल गए है ना। तो आपका मर्जी हुआ जन्म हुआ ना। मर्जी हुआ जन्म का अर्थ ही है नया जन्म हो गया। तो नया ब्राह्मण जन्म है, उसमें फिर वो पुराने संस्कार कहां से आए। लेकिन हम अपने आप को ही हल्का कर देते हैं। पुरुषार्थ के हल्के होने का कारण क्या होता है, अपने को ही थोड़ा हल्का कर देते हैं। क्या करें, फिर भी संपूर्ण थोड़ी बने हैं। बाबा भी कहते हैं ना, अंत में संपूर्ण बनेंगे। फिर भी चल तो रहे हैं ना, अंत में संपूर्ण बन जाएंगे। अरे अंत के समय अगर बहुत समय के अभी संस्कार नहीं होंगे तो अंत में आपके कभी नहीं बन सकते। आप देखो, अभी बहुत समय के देह भान के संस्कार जो है वो आप छोड़ने चाहते हो, बदलने चाहते हो, लेकिन फिर भी कहेंगे योग में बैठते हैं, फिर भी कोई ना कोई बातें आ जाती है, देह भान फिर भी आ जाता है। क्यों आ जाता है, जब चाहते भी नहीं है फिर क्यों आ जाता है? क्योंकि बहुत समय के संस्कार। तो अगर आपके अभी कमजोरी के संस्कार बहुत समय, यानी ब्राह्मण जीवन के बहुत समय, ब्राह्मण जीवन का 1 वर्ष भी बहुत समय, तो आपके बहुत समय के संस्कार अगर कमजोर होंगे ब्राह्मण जीवन के हिसाब से, अंत में कैसे आप संपूर्ण बन सके। जो आप में कमी होंगी वो ही अंत में भी आपका पेपर आएगा, क्योंकि माया जानी जाननहार है। माया कमजोर नहीं है, वो तो योग बल से हम माया को कमजोर करती है। वैसे तो वो बहुत होशियार है, और माया जानती है कि आपकी कमजोरी कौन सी है। और जो आपकी कमजोरी होगी ना, उसी अंत में उसी ही रूप का कोई समस्या आपके सामने आएगी। तो अंत में कैसे संपूर्ण होंगे, बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। कोई कहते हम तो बस 1 साल की है ना, 1 साल भी बहुत काल है संगम युग का, क्योंकि संगम युग का 1-1 सेकंड बहुत बड़ा है, सेकंड नहीं है। हम समझते हैं बस ऐसे ही, कई भाई बहन कहते ऐसे ही खड़े थे ना, तो ऐसे ही आपस में ऐसे ही बात ऐसे ही करे, ऐसे ही कह के चला लेते हैं। लेकिन वो भी टाइम तो गया ना, आपस में क्लास पूरा होगा ना, फिर 2-2, 3-3 जो आपस में थोड़े होंगे संस्कार मिलने वाले, वो बैठ क्लास पूरा होगा ना, आपस में बात करेंगे, हम कहेंगे क्या बात कर रहे थे, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही 2-3 मिनट करे थे। अरे 2-3 मिनट में आपका काल आ जावे तो भरोसा है आपको, है? आजकल तो रास्ते चलते ही ओम शांति हो जाती है। तो हमको पता है हमारा मृत्यु की डेट कौन सी है, किसके पास है डेट? है आपके पास, कोई के पास भी ज्योतिषी वगैरह ने बताया हो? है, पक्का है कि मैं फलानी तारीख को मृत्यु होनी है मेरी? है पता? कोई कोई को जब बीमार होते हैं, जाने वाले होते हैं ना, तो याद तो पता पड़ता है हम ना। हमारे पास भी कई ऐसी हुई है बहने भाई जो बताते हैं बस इस समय हम जाने वाले हैं, और चले जाते हैं आधा घंटा घंटा पीछे आगे। लेकिन अभी तो डेट नहीं है ना, है किसके पास डेट? है, अकाले मृत्यु का समय है, सीजन ही अकाले मृत्यु की है। उसमें हम सोचे, हमको याद है हम जब मधुबन में रहते थे ना, हम तो छोटेपन में आए हैं ना, तो बाबा से ही पले, मामा बाबा के गोदी गोदी बना, याद की भी गोदी है, कोई अरुबरू स्थूल गोदी थोड़ी होती है, उसमें ही पले। तो हम लोगों को 14 वर्ष जो तपस्या की ना, उसमें भी हमारा एक स्लोगन पक्का याद होता था, मधुबन शब्द तो था ही नहीं, तो हम कहते थे ज्ञान गंगा तट होगा, मम्मा बाबा सामने होंगे तब प्राण तन से निकलेंगे। ये हमारा स्लोगन 14 वर्ष के तपस्या में भी याद था। ये तो 14 वर्ष के तपस्या के बाद बाबा ने कहा सेवा में जाना है। हमने कहा बाबा हमारा तो वायदा ये है कि मम्मा बाबा सामने होगा, ज्ञान गंगा का तट होगा, हम कहाँ जाएंगे अभी? लेकिन हमारा पक्का स्लोगन यही था, और हमारे को निश्चय था कि हम ऐसे ही यहाँ ही बाबा के साथ ही शरीर छोड़ेंगे और कट्ठे चले जाएंगे। बस ये तो क्वेश्चन ही नहीं था, स्वप्न में भी नहीं था। तो ऐसे हम अलग अलग सेंटर होंगे, आप सब इतने बाबा के बच्चे बन जाएंगे, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। लेकिन आपका भाग्य था, वो तो जा नहीं सकता है। तो हमारा भी यही था, लेकिन अभी हम ये स्लोगन नहीं मानते। कहाँ भी होंगे बाबा मामा सामने होगा, ऐसे नहीं हर बार मधुबन में ही मामा बाबा सामने होता है, जहाँ भी होंगे ज्ञान स्मृति में होगा और मामा बाबा की याद होगी, प्राण तन से निकलेंगे। तो अकाले मृत्यु का समय है, हमको कोई पता नहीं है क्या भी हो सकता है। अभी देखो लास्ट में हमारी सुरी नाम से फॉरेन से एक बहन आई, कृष्णा बहन। अभी उसको पता था क्या कि मेरा यहाँ मधुबन में ही डेथ होना है? वो तो पार्टी लेके आई, लेकिन उसका भाग्य था। हम तो कहते हैं बहुत अच्छा मृत्यु हुआ जो मधुबन में ब्राह्मणों के साथ हुआ, वहां तो थोड़े ब्राह्मण होते, कितने होते? या तो मधुबन में तो सब दादिया वो सब दृष्टि देते हैं, तो कोई पता है क्या? बस हार्ट में थोड़ा हुआ घबराहट हुई, और थोड़ी घबराहट में डॉक्टर तो कुछ न कुछ करते ही है, हॉस्पिटल में ले गए, चली गई आत्मा, छोड़ दिया शरीर को, बस एक सेकंड में। तो मृत्यु तो एक सेकंड में ही होती है ना, पता तो नहीं पड़ता है। इसीलिए ऐसे भी नहीं समझो हम अंत में संपूर्ण होंगे, अभी तो थोड़ा बहुत हो गई, नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी होगा तो अंत में वो ही धोखा देगा। एक मुरली में, अभी इस मुरली में बाबा ने भी कहा था, तो अपनी पहले कमजोरी चेक करो आप, हरेक में, हमारे में भी, सभी में कोई कमजोरी भी होती है और कोई विशेषता भी होती है। समझो कोई में 99 खराबियां है, हो सकता है किसके संस्कार ऐसे हो बहुत करे, 99 बुराइयां हो सकती है, लेकिन एक विशेषता जरूर छिपी हुई होती हर एक में। जो ब्राह्मण आत्मा बनी है उसमें एक विशेषता जरूर होगी इसीलिए बाबा की विशेष आत्मा बनी। अच्छा, आप किसी भी देश से आए हो, किसी भी मोहल्ले में रहते होंगे, उस मेले में कितने रहते होंगे, आपको ही बाबा ने क्यों अपना बनाया? क्यों दूसरों को बनाते थे ना, आप में क्या बाबा ने देखा? हम तो कहते हैं सबसे बड़ी बात तो ये नशे की है कि हमारे ऊपर ही बाबा की नजर पड़ी। कोई के परिवार में 8 जने हैं लेकिन एक ज्ञान में चल रहे है, 7 चल ही नहीं रहे है। देखो 7 के ऊपर नजर नहीं पड़ी, 1 के ऊपर नजर पड़ गई भगवान की। लेकिन आप तो वही हो ना जिसके ऊपर भगवान की नजर पड़ गई है ना माताएं? तब तो यहाँ पहुंची हो ना भाई। तो चाहे आप में 99 खराबियां हो भी, लेकिन एक विशेषता आप में जरूर है। वो कहते हमको तो पता ही नहीं है हमारे में क्या विशेषता है। कई भाई कहते हैं, बहनें भी कहती है, लेकिन एक विशेषता आप में कौन सी है वो भी समझ लो कि आपने भगवान को तो पहचान लिया। पहचाना है, पहचाना, पहचाना है माताओं ने हाँ? तो ये कोई विशेषता कम है? भगवान को पहचानने की नजर आपको है, विशेषता आप में है, ये कम है क्या? लेकिन क्या है, एक तो अपनी विशेषता स्मृति में नहीं रहती और दूसरा क्या है कि अपने विशेषता को सेवा में नहीं लगाते। कोई भी काम होता है उसको बनाने के लिए लगाना पड़ता है ना। अभी धन है स्थूल, धन को कोई कार्य में लगाएंगे तो बढ़ेगा ना। ऐसे ही बैंक में रखा हुआ भी थोड़ा मिलेगा, लेकिन वैसे ही रख दो तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अपनी विशेषता को जानो, ये तो जनरल विशेषता सभी में है, तभी यहाँ आए हो मधुबन में। लेकिन फिर भी आप में कोई ना कोई विशेषता छिपी हुई है, लेकिन अपनी विशेषता को आप जानते नहीं हो। उसको जान करके सेवा में लगाओ, अपमान में नहीं आना। अपमान में आएंगे तो विशेषता उसको दब जाएंगी और आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। इसीलिए अपनी विशेषता को जानो, उसको कार्य में लगाओ। और बुराइयां जो होंगी ना, जितना आप अपनी विशेषता को कार्य में लगाएंगे तो विशेषता बढ़ती जाएंगी, बुराइयां दबती जाएंगी। तो विशेष आत्माएं हम हैं, बाबा के बच्चे कम नहीं है हम। लेकिन अब मान में आ जाते हैं और अवमान में, हमारे में अवमान है या नहीं है उसकी परख पता है क्या है? जो अवमान में होगा ना उसकी परख है आपको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। जरा भी किसने कुछ कह दिया ना, अवमान जिसमें होगा उसको अपमान बिल्कुल सहन नहीं होगा। एक शब्द भी किसने बोल दिया ना, गया वो बेचारा तख्त से उतरा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप अपने सोमान में रहो, अलबेलेपन के नींद में नहीं सोना। हो तो रहा है, चल तो रहा हो ना, मुरली पर आता रहता हो ना, सुबह को उठता तो हूँ ना, चाहे जुटका खाऊं चाहे गुटका खाऊं, लेकिन उठता तो वो तो नेमी नाथ हो गए, योगी थोड़े हुए। इसीलिए अपने ब्रह्मण जीवन की संभाल करो, जो ब्रह्मण जीवन का महत्व है ना उसको जानो, उसको हल्का नहीं करो। वो तब होगा जब रोज अमृत वेले अपने सामने स्वमान रखे और बार बार बीच बीच में उस स्वमान को स्मृति में लाएंगे, तब भी आपका स्वमान से अवमान बहुत खत्म हो जाएगा। देह भानी तो गिराता है ना, मैं फलाना हूँ, चलो और अवमान नहीं।
अच्छा, ओम शांति।